नमस्कार श्रोताओ, सत्य वचन कार्यक्रम को लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आशा करते हैं कि आप सब आज का कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम अपने इस कार्यक्रम के अंतर्गत पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से पहला तिमोथियस नामक पत्री का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, किंतु इससे पूर्व मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक गीत।
जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, फिर गई है कलिया नई, यीशु बाहर लाया है।
जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है,
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की बड़ी दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद देता हूँ और आपका स्वागत करता हूँ कि आप प्रतिदिन मेरा इंतजार करते हैं ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। मैं अपने उन नए मित्रों का भी स्वागत करता हूं जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि हम इन दिनों बाइबल में से पहला तिमोथियुस के पत्र से अध्ययन कर रहे हैं और अब तक हम देख रहे हैं कि परमेश्वर के दास मूसा के द्वारा हमें यह बताया गया है तिमोथियुस के जीवन से कि एक जवान को किस प्रकार से रहना है कलीसिया के अंदर में और विश्वास को कैसे बनाए रखना है, झूठी शिक्षाओं से कैसे बचना है। जी हाँ, इस प्रकार से आज हम अपने अध्ययन में और आगे बढ़ेंगे। तो आइए, इससे पहले कि हम अध्ययन आरंभ करें, हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम सब मिलकर फिर से एक बार आपके वचन का अध्ययन कर सकें। आज हम फिर पहला तिमोथियुस की पत्र से अध्ययन करते हैं। हमारी विनती है कि आप हम सबको अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि जो कुछ भी आज हम सुनते हैं, सीखते हैं, समझ सकें, ग्रहण कर सकें और उसके अनुसार चलने पाएं। हर एक प्रकार की बुराइयों से, बुरे विचारों से, गंदी बातों से आप हम सब की रक्षा करें। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो इस समय आपके वचन को सुनने के लिए तैयार हैं परंतु बीमार हैं, निराश हैं, चिंतित और परेशान हैं। आप उन्हें शांति दें, उनके जीवन में आप कार्य करें। आज के वचन पर अपनी आशीष दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मित्रों, आइए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और पहला तिमोथियुस की पत्री 4 अध्याय उसके 14 पद को पढ़ें। लिखा है, उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रह। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिखा है कि उस वरदान के प्रति जो तुझ में है निश्चिंत मत रह। परमेश्वर का आत्मा प्रत्येक विश्वासी को एक न एक वरदान देता है और तिमोथियुस को भी उपयोग हेतु वरदान दिया गया था और इसलिए पौलुस उससे कहता है कि उस वरदान के प्रति जो तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है निश्चिंत मत रह, अर्थात उसे उपयोग में लेते रहना है, उसे बरकरार रखना है। आगे कहता है, भविष्यवाणी के द्वारा। ऐसा प्रतीत होता है कि पौलुस ने उस युवक के लिए भविष्यवाणी की थी। लिखा है, हाथ रखते समय। जी हाँ, कलीसिया के पदाधिकारियों के हाथ रखने के द्वारा उसका अभिषेक किया गया था। हाथ रखना वैसे किसी विशेष बात का प्रतीक नहीं है। कुछ लोगों का सोचना है कि हाथ रखने से कुछ भीतर प्रवेश करता है। मेरे विचार में तो हाथ रखने से केवल बीमारी के कीटाणु ही मिलते हैं। हाथ रखने का अर्थ वास्तव में सेवा में सहभागिता को प्रकट करता है। मैंने इस बात पर बल दिया है कि हमारे प्रत्येक नए विश्वासी के सिर पर कलीसिया के पदाधिकारी हाथ रखें और उसे सेवा में बढ़ने में मदद करें। प्रत्येक अभिषेक पाने वाले प्रत्येक सेवक पर उसके सहभागियों को हाथ रखना चाहिए। इसका यही अर्थ है और यह अत्यधिक अर्थपूर्ण भी है कि हम सहयोगियों को जब परमेश्वर की सेवकाई के लिए भेजते हैं तो उसके ऊपर में कलीसिया हाथ रख करके प्रार्थना करें और उसे सेवा के लिए भेज दे। पहला तिमुथियुस के पत्री 4:15 में हम पढ़ते हैं, इन बातों को सोचते रह और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। इन बातों को सोचते रह, अपने अध्ययन में यत्न कर। किन बातों को सोचते रह? परमेश्वर के बातों को, और अपने अध्ययन में यत्न करता रह। सेवक के लिए परमेश्वर का वचन न पढ़ने का कोई बहाना नहीं है और विश्वासी के लिए भी वचन न पढ़ने का कोई भी बहाना नहीं है, क्योंकि प्रत्येक विश्वासी को परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहिए, पढ़ना है, और इस रीति से परमेश्वर के वचन में बलवंत होते जाना है। पौलुस कहता है कि उन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह। मैं दैनिक मनन को परमेश्वर के वचन के अध्ययन और पठन पाठन का विकल्प नहीं मानता हूँ। बिस्तर में लेटकर आधी नींद में बाइबल पढ़ने से कोई भी लाभ नहीं है, और न ही सुबह आधी नींद में वचन पढ़ना कोई अर्थपूर्ण या अर्थ रखता है, या काम पर जाते समय, भाग दौड़ में, नाश्ते के समय प्रार्थना से कोई भी लाभ नहीं है। मेरे मित्रों, क्या आप विज्ञान और गणित ऐसे ही पढ़ते हैं? परमेश्वर का वचन हमारे संपूर्ण प्रयास और समर्पण के योग्य है, और सच तो यह है कि हम वचन को उतना समय कभी नहीं दे पाएंगे जितना उसका अधिकार है। पौलुस कहता है, तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। आप अपने प्रचारक की सबसे बड़ी प्रशंसा तब करेंगे जब आप यह कह पाएं, आप अपने प्रचार में बहुत उन्नति कर रहे हैं। जी हाँ, यह आपकी सर्वोत्तम प्रशंसा के शब्द हैं। आपको लोग देख करके कहेंगे कि आप वचन में उन्नति कर रहे हैं, क्योंकि आप प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं। पहला तिमुथियुस के पत्र 4:16 में लिखा है, अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। मेरे मित्रों, मैं यहां एक बात कहना चाहता हूं, परमेश्वर उस सेवक पर दया करे जो परमेश्वर का वचन नहीं सुनाता है। यह एक भयानक पाप है। परमेश्वर के वचन का प्रचारक होकर चूक जाए तो उचित होगा कि वह एक गुंडा ही बन जाए। आप मुझे गलत न समझें, क्योंकि यह इतना बड़ा पाप है, इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है। तो आइए आज हम एक निर्णय लें और परमेश्वर के वचन को पढ़ें और परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रभु यीशु को प्रचार करें। मेरे प्रियो, यहां पर हम देखते हैं कि अध्याय 4 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 5 से जारी रखेंगे, जिसका विषय है कलीसिया में पदाधिकारियों के उत्तरदायित्व। अध्याय 5 और 6 दोनों ही में कलीसिया के पदाधिकारियों के उत्तरदायित्वों का व्यवहारिक विषय है। यह आज के कलीसियाई जीवन की प्रयोगात्मक शैली है। इसमें उत्साहजनक बात तो वैसे कोई है नहीं, परंतु हमारे लिए यह एक अर्थपूर्ण एवं वास्तविक बात है। स्थानीय कलीसिया के विभिन्न समूहों के साथ सेवकों का संबंध, आइए हम देखें। पहला तिमुथियुस के पत्री 5 अध्याय उसका एक पद लिखा है, किसी बूढ़े को ना डांट पर उसे पिता जानकर समझा दे और जवानों को भाई जानकर। ध्यान दे, बूढ़े सबसे पहला संबंध का विषय है वृद्ध पुरुषों के साथ तीमोथियस के संबंध। यहां मतभेद की बात उठती है कि पौलुस वृद्ध पुरुषों के विषय में कह रहा है या प्राचीनों के विषय में। आरंभिक कलीसिया में प्राचीन शब्द पद के लिए भी काम में लिया जाता था, परंतु यहां आयु में बड़े पुरुषों का संदर्भ दिया गया है। मेरे विचार में पौलुस दोनों ही बातों को सोच रहा था, वह परमेश्वर की परिपक्व संतान और प्राचीन दोनों ही के बारे में कह रहा है। पौलुस का अभिप्राय दोनों ही से है, क्योंकि प्राचीन भी आयु में बड़े ही होते हैं। किसी बूढ़े को ना डांट पर उसे पिता जानकर समझा दे। तीमोथियस किसी भी वृद्ध जन को सबके सामने ना डांटे परंतु अकेले में ले जाकर उसे समझाए। तीमोथियस एक युवक था और उसे कलीसिया के वृद्ध जनों के साथ बुद्धिमानी का व्यवहार करना था। उसे ऐसा व्यवहार नहीं करना था कि जैसे वह सब जानता है या वृद्धों पर आज्ञा नहीं चलाना है। उसे उनको प्रोत्साहित करना था और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें मदद भी करना है, अकेले में ही उनसे कुछ कहना था। लिखा है, जवानों को भाई जानकर। वृद्ध जनों और अपनी ही आयु के मनुष्यों के साथ तीमोथियस को मधुर संबंध बनाकर रखना है। पहला तीमोथियस 5 अध्याय के 2 पद में लिखा है, बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर और जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन जानकर समझा दे। पूरी पवित्रता से कलीसिया के सेवक को विपरीत लिंग के साथ संबंधों में अत्यधिक सावधान रहना है। इस क्षेत्र में पाप से बढ़कर अन्य कोई कारण नहीं जिससे कलीसिया या कलीसियाई सेवा को सबसे अधिक हानि पहुंचाई है। इस समस्या के कारण जब किसी सेवक को कलीसिया छोड़ना पड़ता है तो कलीसिया की आत्मिक मृतक अवस्था प्रकट होती है। ऐसे अनुभव से अधिक कलीसिया की आत्मिकता का विनाशक अन्य कुछ नहीं। नई नैतिकता कलीसिया में ना तो काम करती है और न ही कभी करेगी। मेरे मित्रों, वृद्ध और युवा स्त्री पुरुष के साथ संबंधों के विषय में तीमोथियस को निर्देश देने के बाद अब पौलुस तीसरे वर्ग के साथ संबंधों का निर्देश देता है। आइए हम पढ़ें पहला तीमोथियस की पत्री 5 अध्याय उसका 3 पद, उन विधवाओं का जो सचमुच विधवा हैं आदर कर। लिखा है, आदर। आदर में किसी मूल्य का अर्थ निहित है। आरंभिक कलीसिया विधवाओं की सुधि लेती थी और वह उनके विषय अत्यधिक सावधान थे। प्रेरितों के काम की पुस्तक के अध्याय 6 में हम विधवाओं के संबंध में उत्पन्न समस्या को देखते हैं। यूनानी विश्वासियों को ऐसा लगता था कि उनकी विधवाओं को अनदेखा किया जा रहा है, अतः प्रेरितों ने विधवाओं के हित का ध्यान रखने के लिए अलग से सेवक नियुक्त कर दिए थे कि वे स्वयं वचन के प्रचार पर ध्यान दें और दूसरे सेवक विधवाओं की देखभाल कर सकें। पौलुस यहां निर्देश देता है कि विधवाओं का ध्यान कैसे रखा जाए। लिखा है, उन विधवाओं का जो सचमुच विधवा हैं आदर कर। परमेश्वर के वचन में दिए गए निर्देश वास्तव में व्यवहारिक हैं। उनमें बुद्धि की बातें हैं, न कि भावनाओं की। मसीही जनों को कोमल हृदय का माना जाता है और हमारी सेवा के लिए अनेक हाथ आगे बढ़े हुए हैं। हमें अत्यधिक सावधान रहना है। आरंभिक कलीसिया विधवाओं की सुधि लेती थी, परंतु भावनाओं में बहकर या अव्यवस्थित रूप से नहीं। सेवकों को परख कर देखना आवश्यक था कि कौन सच में विधवाएं थी, कौन आवश्यकता ग्रस्त थी और किसे कितनी आवश्यकता थी। आज यह एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। विधवाओं की सुधि लेने वाली कलीसियाएं अब अधिक नहीं हैं। पौलुस इस विषय पर सविस्तार से चर्चा करेगा। पहला तीमुथियुस की पत्री 5 अध्याय उसके 4 पद में लिखा हुआ है, यदि किसी विधवा के बच्चे या नाती पोते हों तो वे पहले अपने ही घराने के साथ भक्ति का वर्ताव करना और अपने माता पिता आदि को उनका हक देना सीखें, क्योंकि यह परमेश्वर को भाता है। उन्हें देखना था कि किसी विधवा की संतान या नाती पोते हैं और वे उसकी सुधि क्यों नहीं लेते हैं। उसके नाती पोतों का भी उत्तरदायित्व है कि वे उसकी सुधि लें। यह परमेश्वर का प्रबंध था और आज भी है। हम पहला तीमुथियुस की पत्री 5 अध्याय उसके 5 पद में पढ़ते हैं, जो सचमुच विधवा है और उसका कोई नहीं, वह परमेश्वर पर आशा रखती है और रात दिन विनती और प्रार्थना में लवलीन रहती है। जिस विधवा का कोई नहीं और वह परमेश्वर पर आशा रखती है, दिन रात प्रार्थना में लीन रहती है, वह पादरी और कलीसिया के लिए ही नहीं, अपनी आवश्यकताओं के लिए भी प्रार्थना करती है। उसे अधिकार है और परमेश्वर हमारे द्वारा उसकी आवश्यकता पूरी करवाता है, उसकी प्रार्थना का उत्तर देता है। वह स्पष्ट कहता है कि हमें ऐसी विधवा की सहायता करना चाहिए। परमेश्वर की रीति पर चलना क्या ही अत्यधिक मनभावन है। मेरे प्रियो, आज हमें चाहिए कि हम उन विधवाओं को देखें जो सचमुच में जरूरतमंद हैं। पहला तीमुथियुस की पत्री 5 अध्याय के 6 पद में लिखा है, पर जो भोग विलास में पड़ गई वह जीते जी मर गई है। यदि आप देखें कि कोई विधवा दावतें करती हैं, तो वह सहायता के योग्य नहीं है, चाहे उसके बच्चे, भाई या बहन कलीसिया में कितना भी महत्वपूर्ण स्थान क्यों ना रखते हों, उसे सहायता नहीं करना चाहिए। पहला तीमुथियुस 5:7 में लिखा है, इन बातों की भी आज्ञा दिया कर ताकि वे निर्दोष रहें। पौलुस कहता है, तीमुथियुस कलीसिया को स्पष्ट समझा दे कि वे इस विषय में आदर के साथ काम करें। तब वह कहता है, पहला तीमुथियुस 5:8 में, पर यदि कोई अपनों की और नीच करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। मेरे मित्रों, मैं नहीं जानता कि इससे अधिक प्रभावी इसे कैसे बनाऊं। विधवा के अपने ही संबंधी उसकी सुधि लें। एक पुरुष या एक स्त्री किसी सभा या गोष्ठी में कैसी भी गवाही दें, परंतु यदि वह अपने परिजनों की सुधि नहीं लेते तो परमेश्वर की दृष्टि में उनकी गवाही व्यर्थ ठहरती है। वे धर्म त्यागियों से भी बुरे हैं, यह अति स्पष्ट है। आप धर्मशास्त्र में कुछ भूल भी जाएं, परंतु इसे नहीं भूल सकते हैं। पहला तीमुथियुस की पत्री 5:9 में लिखा है, उसी विधवा का नाम लिखा जाए जो 60 वर्ष से कम की ना हो और एक ही पति की पत्नी रही हो। ध्यान दीजिए, नाम लिखा जाए, सेवा के लिए सूची में लिखा जाए। उनके लिए आयु सीमा क्यों थी? इससे छोटी आयु की विधवा नौकरी कर सकती थी, वह अपने लिए जीविकोपार्जन कर सकती थी और इतना ही नहीं, हो सके तो वह शादी भी कर सकती थी। और यही कारण था कि 60 वर्ष के ऊपर के लोगों को ही सहायता देना था। पहला तीमुथियुस 5:10 में लिखा है, और भले काम में सुनाम रही हो, जिसने बच्चों का पालन पोषण किया हो, अतिथियों की सेवा की हो, पवित्र लोगों के पांव धोए हो, दुखियों की सहायता की हो और हर एक भले काम में मन लगाया हो। भले काम में सुनाम रही हो, पौलुस कहता है कि किसी विधवा का अतीत जानना अच्छा है। हर किसी की सहायता ना करें, परंतु यदि कोई विधवा वैसी ही है जैसा पौलुस कहता है, तो अवश्य उसकी सहायता की जाए। मेरे विचार में कलीसिया इन आधारभूत और आसान सिद्धांतों का पालन करे तो अच्छा है। और आज जो भावनात्मक निवेदन किए जाते हैं कि हमारे कोमल हृदयों को स्पर्श करें और सहायता प्राप्त करें, जबकि उनके मध्य सच्ची आवश्यकता ग्रस्त विधवाएं सहायता से वंचित रह जाती हैं, हम उनकी ओर ध्यान ही नहीं देते हैं, उनके घर भी नहीं जाते हैं, वे अकेले ही रहती हैं, उसके बच्चे या तो उससे दूर हैं या मर चुके हैं, वह वास्तव में आवश्यकता ग्रस्त है। यदि कलीसिया ऐसी विधवाओं की सुधी ले तो उनका यह व्यवहार कलीसिया की दृष्टि से नहीं चूकता है। मेरे मित्रों, मैं यह मानता हूं कि सहायता पाने वाली इन विधवाओं को कलीसिया में सेविकाएं होना चाहिए। उन्हें कलीसिया में कोई न कोई सेवा करना आवश्यक है। कुछ वर्षों पूर्व मैंने एक विधवा से कहा कि वह एक ऐसी स्त्री से भेंट करे जिसके पति का हाल ही में निधन हुआ था और न तो उसका परिवार था और न ही उसका कोई मित्र था। मैंने सोचा कि यह विधवा उसकी आवश्यकताओं को समझ पाएगी, क्योंकि वह भी उसी परिस्थिति से निकल चुकी थी। वे दोनों बड़ी अच्छी सहेलियां बन गई और इसी परिस्थिति के कारण परमेश्वर की संगति में विकास करने लगी। यही कारण है कि विधवाओं को कलीसिया में किसी न किसी रूप में सहायता करना आवश्यक है। पहला तीमुथियुस की पत्री 5 अध्याय उसके 11 और 12 पद में लिखा हुआ है, पर जवान विधवाओं के नाम न लिखना, क्योंकि जब वे मसीह का विरोध करके सुख विलास में पड़ जाती हैं तो विवाह करना चाहती हैं और दोषी ठहरती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पहले विश्वास को छोड़ दिया है। युवा विधवा शायद फिर से विवाह करना चाहे। मेरे विचार में इसमें कोई बुराई नहीं है, परंतु ध्यान दें कि अनुचित कारणों से विवाह करना जोखिम भरा होता है। यह खतरा इस बात का है कि वह अपने विश्वास से दूर न हो जाए। कलीसिया को अति सावधान रहना है और युवा विधवाओं को परखना आवश्यक है, उन्हें सिखाना और उन्हें सही मार्ग देना भी आवश्यक है। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम इस अध्ययन में देख रहे हैं कि पौलुस तीमुथियुस से कहता है कि बूढ़ों को पिता जानकर, बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर, जवान भाइयों को भाई जानकर और स्त्रियों को बहन जानकर, और तब वह विधवाओं के पास आता है ताकि हम उनका भी ख्याल रखें। क्या ही सुंदर वचन है कि कलीसिया अच्छी रीति से अपने आप में आगे बढ़ सके। मेरे मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि आज के इस अध्ययन को आपने अपने जीवन में ग्रहण किया है, आपने इस वचन को सुना और सीख लिया है और आप इसे अवश्य ही अपने जीवन में, अपने कलीसिया में लागू करेंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। 3339। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, यीशु तू है महान, तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ सुबह और शाम। गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, यीशु तू है महान, तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ सुबह और शाम। जब मैं गुनाहों में पड़ा, तेरे प्रेम से मैं दूर था, तेरे सन्मुख आने के लाया मैं कदापि योग्य न था। जब मैं गुनाहों में पड़ा, तेरे प्रेम से मैं दूर था, तेरे सन्मुख आने सहारा बना अपने पास मुझे बुलाया, इसलिए मसीहा होठों से अपनी स्तुति तेरी करूंगा। गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, हे यीशु तू है महान, तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ सुबह और शाम। तेरे अनुग्रह तेरी दया को कैसे भूलूं मैं मसीह, मेरे श्राप को तूने हटा कर खुद श्रापित बना मसीह। तेरे अनुग्रह तेरी दया को कैसे भूलूं मैं मसीह, मेरे श्राप को तूने हटा कर खुद श्रापित बना मसीह। तूने क्रूस पर लहू बहा कर मुझे पापों से शुद्ध किया, मेरे आंसुओं को पोंछ कर सारे दुख दूर किया। गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, यीशु तू है महान, तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ सुबह और शाम। गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, यीशु तू है महान, तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ सुबह और शाम।